प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहाँ है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर।
ये बेमतलब की जो दुर्घटनाएं होंगी, अकाल मृत्युएं होती हैं, तो इनसे दुख होता है हमारे को, बच्चा मर गया, कोई पत्नी मर गई, कोई पति मर गया, किसी को कैंसर होगी, तो उनसे बचने के लिए परमात्मा कहते हैं आप मेरी द्वारा दी गई ये साधना करो, ये मंत्र जाप करो, मैं तुम्हारी फिर रक्षा करूंगा, अकाल मृत्यु नहीं होने दूंगा, तुम्हारे बच्चे तुम्हें प्यारे लगते हैं, पांच पिता प्यारे लगते हैं, तो ये तभी ये प्यार बना रहेगा जब सतभक्ति करोगे, ये भी सुरक्षित रहेंगे। जब तक आप यहां रहोगे, आप यहां भी ठीक रहोगे, और भगवान बच्चों को भी सद्बुद्धि देगा, आपकी भक्ति बनेगी, आपकी वरदवस्था भी अच्छी तरह व्यतीत होगी, क्योंकि सत्संग सुनने वाले और भक्ति करने वाले बच्चे पुत्र वधु और पुत्र अपने आप विनम्र हो जाते हैं, उनके अंदर दया भाव भर जाती है, और कोई लोभ लालच से वो सेवा नहीं करते, वो एक अपना नैतिक कर्तव्य जानकर फिर सेवाएं करते हैं, तो आपकी वृद्धावस्था भी सुथरी बीतेगी, भगवान की कुछ भक्ति साथ देगी, कुछ बच्चों में परमात्मा उनमें भाव अच्छा भरेगा। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं जब तक आप यहां रहो इस गंदे लोक में, तो हमारी शरण ग्रहण करो, आपको यहां भी सुख दूंगा, और जब यहां से जाओगे, विमान में बैठकर जाओगे, आपको महसूस ही नहीं होगा कि आपकी मृत्यु हुई, आप शरीर छोड़ोगे पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो एक ऊपर का खोखा है, ये तो सबसे गंदा बॉडी है जो आपको प्राप्त है, हमें प्राप्त है, और इसमें इसको हम फाइनल मान रहे हैं तो बहुत अच्छा है, ये अच्छा इसलिए है कि इससे हम भक्ति कर सकते हैं, ना युक्ति अच्छा नहीं, और इस भक्ति के लिए ये सबसे अच्छा है, क्योंकि ये मानव शरीर बार बार प्राप्त नहीं होता, इसलिए इसका सदुपयोग करें। अब हम आपको बताना चाहेंगे, ये दास आपको बताएगा कि आप यहां फंसे कैसे। सबसे पहले आपको इस भक्ति मार्ग में लगने से पहले, इस ज्ञान को ग्रहण करने से पहले, सृष्टि रचना का ज्ञान होना अनिवार्य है। जिसमें आपको सृष्टि रचना का ज्ञान हो जाएगा, फिर आपको सभी सदग्रंथ और यो काल का सारा जाल आसानी से समझ में आओगा। तो पुण्यात्माओं, ये सत्संग, ये ज्ञान हमने कभी सुना नहीं था, जिस कारण से प्रथम बार सुनोगे तो ऐसा लगेगा जैसे वैसे बनावटी सी कहानी है, लेकिन जब सदग्रंथों से दास प्रमाणित करेगा उस कथा को, आप दांतों तले उंगली दबाओगे कि सचमुच ये तो सारा ही सत्य है। अब आपको दास सुनाएगा, परमेश्वर कबीर जी जो हैं, ये धानक दुल्हा रूप में जो काशी में 120 वर्ष रहे थे, ये पूर्ण परमात्मा हैं, ये सारी सृष्टि के रचनहार हैं, और हम सभी आत्माओं के जनक हैं। और परमात्मा जैसे कोई क्रिएटर है, तो क्रिएशन के बारे में वो क्रिएटर ही बता सकता है, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को रचने वाला ही बता सकता है, इसलिए अभी तक ये सृष्टि रचना का ज्ञान किसी को नहीं था। ना श्री ब्रह्मा को, ना श्री विष्णु को, ना शिव को, केवल उन महापुरुषों को अवश्य हुआ जो परमात्मा से परिचित हुए हैं। जिनमें से कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, और आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेकड़ा, पहले जिला मेरठ साहब, बागपत बन गया बताते हैं, जैसा भी, उत्तर प्रदेश वाले, इन महापुरुषों और आदरणीय स्वामी रामानंद जी, काशी बनारस वाले, इनको परमात्मा सीधे मिले और सचखंड दिखाया ऊपर का सतलोक जहां वो परमात्मा रहते हैं, और उनको फिर वापस छोड़ा, अपने गवाह बना के, अपने साक्षी बनाए। उन महापुरुषों को ये ज्ञान था, लेकिन उनकी वाणी में इतना डिटेल नहीं बनाया उन्होंने, क्यों? उनको मालूम था कि भगवान ने जो ज्ञान दे ही रखा है तो बार बार उसको बताने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो परमेश्वर कबीर जी ने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को कैसे बताया है कि पहले केवल परमात्मा कबीर जी थे अकेले, और वो एक कमल के ऊपर विराजमान थे। उसके बाद उन्होंने नीचे के सभी, सबसे पहले उन्होंने अकेलोक, अनामी लोक की रचना की। उसमें वे अकेले रहते हैं, पूरे सारे के सारे लोक में परमात्मा अकेले ही रहते हैं। उस वहां बैठकर परमात्मा ने नीचे के तीन लोकों की ओर रचना की अपने वचन से। अकेलोक से नीचे अगम लोक है, उससे नीचे अलख लोक है, उससे नीचे फिर सत्य लोक है। ये चार लोक हैं ऊपर के, ये अविनाशी कहलाते हैं, और ये चारों मिलाकर भी एक ही अविनाशी लोक कहलाता है। जैसे भारतवर्ष के अंदर बहुत से राज्य हैं, और सारे राज्य मिलाकर भी भारत कहलाता है, ऐसे। और परमात्मा ने अन्य तीनों लोकों में भी अपना ही अन्य रूप बनाया, और प्रत्येक में ऐसा ही गुम्बद और सिंहासन बनाया, उसमें विराजमान है परमात्मा। और सबसे नीचे वाला जो सतलोक है, उसमें भी परमात्मा ऐसे ही एक बहुत बड़े गुम्बद के अंदर और एक सिंहासन पर, तकत पर विराजमान है। तो वहां बैठकर, सतलोक में बैठकर परमात्मा ने पहले सतलोक की रचना की। सतलोक के अंदर पहले एक वचन से 16 द्वीप बनाए, और फिर 16 वचनों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। उनमें से एक अचिंत नाम का भी एक पुत्र है, सहजदास, जोगजीत आदि ये उनके पुत्र हैं। तो उसके बाद परमात्मा ने अचिंत से कहा, उसके बाद परमात्मा ने मानसरोवर वगैरह वहां की सब रचना कर दी थी। तब परमात्मा ने ये झटका देने के लिए कि समर्थ का काम समर्थ ही कर सकता है, यदि कोई दूसरा चेष्टा करता है तो वो गलती ही करता होता है, तो परमात्मा ने अचिंत अपने पुत्र से कहा कि आप सृष्टि रचो। अचिंत ने अपने वचन से अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की, श्रीमद् भगवद् गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में तीन पुरुष हैं, एक सर पुरुष, एक अक्षर पुरुष, और तीसरा उत्तम पुरुष है तू अन्य, इन दोनों से अन्य है जो श्रेष्ठ परमात्मा है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 के प्रश्न के उत्तर में अर्जुन ने पूछा कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है? गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो सर्ब्रह्म, सर्पुरुष कहो, सर्ब्रह्म कहो, दूसरा अक्षर पुरुष कहो, अक्षर ब्रह्म कहो, उसे परब्रह्म कहो, और तीसरा परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, या उसको सत्य पुरुष कहो, वो तीसरा परमात्मा परम अक्षर पुरुष है, उसको हम सत्य पुरुष कहते हैं। अचिंत ने अक्सर पुरुष की उत्पत्ति की और उससे कहा कि आप मुझे सृष्टि रचना में सहयोग दें। ये काफी और भी बहुत सा प्रकरण है, लेकिन हमने जितना आवश्यक है उतना ही बताएंगे आपको। तो अक्सर पुरुष वहां से उठकर मानसरोवर के अंदर चला गया। वहां अपना जो बॉडी है वो श्वास से नहीं चलता और इसलिए वहां अमर शरीर है हमारा। तो उस मानसरोवर के अंदर जाकर आनंद से लेट गया, निंद्रा आ गई। काफी समय बीत गया तब अचिंत ने परमात्मा से, सत्य पुरुष से प्रार्थना की कि भगवान अक्सर पुरुष निंद्रा में है, उठ नहीं रहा है, सृष्टि रची नहीं जा रही। तो परमात्मा ने कहा कि पुत्र जब आपसे अक्सर पुरुष ही नहीं जगाया जा रहा तो सृष्टि खाक रचोगे तुम, बंद करो अपनी सृष्टि, तुम्हारे बस की बात नहीं है। इस बात से अचिंत बहुत बहुत शर्मिंदा हुआ और अक्षमा याचना की कि भगवान आगे से कोई हम ऐसे काम नहीं करेंगे, आपकी आज्ञा से ही मैंने ये सब कुछ किया था। तो परमात्मा ने कहा कि मैंने इसलिए तुझे आज्ञा दी थी कि तुम्हारे अक्षमता का आपको पता चल जाए, कि जिसका काम उसी को साज जाए और करे तब मूर्ख बाज जाए। ये तो एक देसी कहावत है। उसके बाद सभी को ये बात होगी कि समर्थ के काम में टांग डाणी नहीं चाहिए। तो एक तो झटका दिया मालिक ने उनको, फिर परमेश्वर ने क्या किया कि उस सरोवर से ही एक थोड़ा सा जल लिया अमृत और उसको अपने वचन से एक अंडा बना दिया। अंडे में एक आत्मा प्रवेश कर दी, वो अंडा छोड़ दिया, बहुत बड़ा अंडा था, बहुत बड़ा। उस अंडे को छोड़ दिया उस जल में, वो उस जल के अंदर अंडा जा रहा था गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ। अचिंत के निकट जब वो पहुंचा, उसकी आहट से पाकर के अक्सर पुरुष के पास से पहुंचा जो निंद्रा में सोया पड़ा था सरोवर के अंदर। जब अक्सर पुरुष के पास से वो पहुंचा, निकट पहुंचा, तो एकदम उसकी आंखें निंद्रा भंग होगी अक्सर पुरुष की। अक्सर पुरुष की निंद्रा भंग हुई तो उस जैसे कोई अधूरी नींद जाग जाता है तो वो कोप से देखता है, उसमें कुछ गुस्सा सा होता है। ऐसे कोपित दृष्टि से उसने देखा कि किसने मेरी निंद्रा भंग की है, तो वो अंडा फूट गया। उस तेज से अंडा दो भाग हो गया, उसमें से ये ज्योत स्वरूपी निरंजन जिसको आगे चल के काल कहा गया, जिसको सरपुरुष भी कहते हैं, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में सरपुरुष कहा है। तो आकाशवाणी की परमात्मा ने सत्य पुरुष ने कि अक्सर पुरुष तुम निंद्रा में थे, आपको जगाने के लिए ये सब कुछ क्रिया की थी और तुम दोनों बाहर आ जाओ, अक्सर पुरुष और ये सरपुरुष, ये दोनों सरोवर से बाहर आ गए। फिर परमात्मा ने आदेश दिया कि आप जाओ, दोनों के दोनों अचिंत के द्वीप में रहो, अचिंत के लोक में रहो। उसके पश्चात परमात्मा ने, सत्य पुरुष ने हम सभी आत्माओं की रचना की, उत्पत्ति की। हम सभी का परिवार था, बहुत सुंदर मकान महल है वहां पर, बहुत सुंदर, जैसे हीरे मोतियों की चमक होती है वहां की जो बिल्डिंग बनी हुई है उनमें ऐसी सुंदर चमक है। बहुत ही मनमोहक और सुंदर महल हैं, बहुत लंबे चौड़े बने हुए हैं और आगे उनके बहुत सुंदर पार्क है, उसमें अपने आप फुहारे छूट रहे हैं, जहां जिस सुख को आप छोड़कर आ चुके हो। पुण्यात्माओं इस बात को आप हृदय में जता लेना, यह किसी डूम बाट के गीत नहीं है कि किसी को प्रसन्न करने के लिए या स्वार्थवश गाए गए हो। ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है और उन महापुरुषों ने बताया है जिनको भगवान मिले हैं, उन्होंने इसका समर्थन किया है और दास ने इसको अच्छी तरह जाना है और आपके समक्ष इसको इसलिए व्याख्यान किया है। वो सुख वहां पर है, कोई काम नहीं, आपस में कोई राग द्वेष नहीं, क्योंकि किसी चीज का अभाव नहीं है। जैसे आप एक रिहर्सल करते हो, यहां आते हो सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में, और यहाँ आप चाहे कितने ही दिन रुको, दो दिन, चार दिन, हफ्ता, दस दिन, तो आप क्या देखते हो कि आपको एक जैसी व्यवस्था, लेटने, बैठने, सोने का स्थान एक जैसा, पंखे, कूलर जो लगे हुए हैं वो आपके एक जैसे, और उधर से खाना है सबको एक स्थान पर बना बनाया तैयार मिलता है, कभी जाओ खाना खाओ, कभी किसी टाइम, और कभी चाय की भरी भराई वो टैंकी तैयार रहती है, कभी टूटी मरोड़ी गिलास बाजार पियो गटगट। यहाँ आपको बगैर किए सारी वस्तु मिल रही है, और यहाँ भी कोई राग द्वेष पैदा करता तो मूर्ख आदमी है। अब क्या करते हैं हमारी, क्योंकि वृत्ति घनी खराब होगी। अब जैसे आपका बिस्तर लगा हुआ है, सबको एक जैसा बिस्तर है, सबका एक जैसा मैट है, और कोई आकर साथ में आपके लेट भी जाता है अनजान से, तो उसको बेमतलब खसाई नहीं होगा, मेरी जगह पता नहीं क्यों बिछा लिया, हट यहाँ से, तो ये तो मूर्खा की बात है, दो फुट नून डाल ली, इसमें के कौन सा आश्रम छोटा है, तो इस तरह को बकवाद करे तो वो अलग बात है। बाकी यहाँ कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें आपने राग द्वेष करना पड़े, और सारी चीज नाओ दो, भगवान के गुण गाओ, भूखला कर रोटी खाया हो, दल करे जब चाय पी लो, बता फिर और क्या चाहिए। तो ये तो यहाँ के लोक में सुविधा है, क्योंकि यहाँ लोक भी अच्छा नहीं, तो यहाँ की सुविधाएं भी इतनी अच्छी नहीं है। तो उस सतलोक के अंदर आपके मनोमाई वो विमान है, जब भी आपकी इच्छा हो आपके पारक के अंदर विमान खड़ा पाओगा, उस विमान को यहाँ के विमान की तरह उठने की खातर फर फर नहीं करना पड़ता, वो तो भगवान की शक्ति से चलते हैं, ऐसे उठकर चल पड़ते हैं, जहां चाहे वहां रोक लो, बीच में रोक लो, जहां चाहे पानी के ऊपर उतार लो उसको, ऐसे खड़े हो जाएंगे। तो कहने का भाव ये, उन सुखों को हम छोड़े, उनको हम यहाँ ढूंढ रहे हैं, यहाँ तो 21 ब्रह्मांड में नहीं पा सकते आपको। और हमारे अंदर एक दोष और है कि जब हम सुखी हो जाते हैं तो भगवान को भूलते हैं, और यहाँ हम मार खाते हैं, इसलिए परमात्मा आपको याद दिलाते हैं यहाँ जो आप फंसे हुए उनको, कि सुख में भगवान को भूला नहीं करते, बहुत बड़ी मार खा जाते हो। तो वहां सुख में हम भगवान भूले, वहां क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद, वहां कुछ वर्षों के बाद, कुछ यहाँ के युग, वहां कोई समय सीमा नहीं है, तो हम यहाँ हैं इसलिए कुछ उसके हिसाब से बता रहे हैं। कुछ युगों के बाद क्या हुआ कि इस सरपुरुष के मन में खरपतवार पैदा हुआ, और जो आपके यहां भी विद्यमान है हमारे अंदर सब में, उसके मन में ये आया कि मैं, हम तीन जने एक द्वीप में रह रहे हैं, और बाकी जितने भी सभी आप भी अलग अलग द्वीप थे आपके, अलग अलग स्थान थे आपके बहुत बड़े बड़े, तो और सभी अकेले रह रहे हैं, यानी अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, तो भी वो इंडिविजुअल रह रहे हैं। तो इसके मन में ये दोष आ गया कि हम तीन एक द्वीप में एक स्थान पर और बाकी सब इंडिविजुअल हैं, तो उसने सर्पुरुष ने अलग से स्थान प्राप्त करने के लिए तपस्या शुरू कर दी। जब यहां के 70 युग तक उसने तप कर लिया, तब परमात्मा ने पूछा सत्य पुरुष ने कि सर्पुरुष आप क्या मांगते हो, क्यों तपस्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि भगवान आप तो अंतर्यामी हैं, आपको सब मालूम है, फिर भी मैं अपनी अर्ज लगाता हूं, ये स्थान मेरे लिए कम है, हम तीन एक स्थान पर रह रहे हैं, अचिंत, अक्षर पुरुष और सर पुरुष, हम तीनों एक स्थान पर रह रहे हैं, अन्य भाइयों के पास, सब बहनों के पास अलग से स्थान है, मैं अपना अलग स्थान चाहता हूं। तो परमात्मा ने, सतपुरुष ने कहा कि आपको मैं 21 ब्रह्मांड देता हूं आपके तप के बदले में, आपको 21 ब्रह्मांड देता हूं, जैसे कोई धनी पिता अपने पुत्र को 21 प्लाट दे दे, उनमें कंस्ट्रक्शन नहीं होती प्लाटों में, प्लाट्स में, तो उसी से, तो उसने जाकर के परमात्मा ने उसको एकांत स्थान पर सतलोक के बाह्य क्षेत्र में 21 प्लाट दे दिए, 21 ब्रह्मांड दे दिए। अब ये सरपुरुष वहां घूम रहा है, कभी उस प्लाट को देख रहा है, कभी उस प्लाट को देख रहा है, कभी उसको देख रहा है, खाली पड़े। फिर उसके मन में आए कि इनमें कंस्ट्रक्शन हो, रचना हो, तब बात बने। इसने फिर तपस्या शुरू की, क्योंकि सारा कुछ वो कुल मालिक है, जिसके आगे सभी भिखारी हैं। तो इस ज्योत स्वरूपी निरंजन अर्थात सरपुरुष ने, काल ने फिर से तपस्या की और सत्ययुग जब तप कर लिया, जब परमात्मा ने पूछा भी क्या मांग रहा है तू, अब इसने कहा कि भगवान मुझे कुछ सृष्टि रचना की सामग्री दे दो, कुछ मटेरियल दो जिससे मैं सृष्टि रचना कोई रचना करूं अपने प्लाटों में। तब परमेश्वर ने उसको 5 तत्व और 3 गुण दे दिए। केले बेटा खेल खिलौनों ते, ये 3 गुण रजगुण सतगुण और तमगुण दे दिए और ये 5 तत्व दे दिए, जैसे आकाश अग्नि वायु जल पृथ्वी आदि। इसने वहां पर इन पदार्थों से रचना की, इन मटेरियल से। फिर इसने सोचा कि इसमें कुछ आत्मा भी मेरे साथ हो, अकेला करूंगा क्या। इसने फिर से तपस्या शुरू की, अपने आत्माओं हम क्यों फंसे, अब हम यहां क्यों फंसे। उसका कारण ये बना कि जब ये तपस्या कर रहा था और हम सभी आत्माएं इसको देख रहे थे, ये एक पैर पे खड़ा होकर तपस्या कर रहा था, कभी उस पैर को बदल लेता था, कभी उसको बदल लेता था, और हम इसको देख रहे थे। हम इसके ऊपर आसक्त हो गए, क्योंकि वहां हमारी नजर जो है बहुत तेज होती है, बहुत दूर से भी हम बिल्कुल साफ देखते हैं। हम इस पर आसक्त हो गए और अपने परमात्मा से विमुख हो गए। हम पतिव्रता पद से गिर गए। अब ये बुराई आपके अंदर आज भी है, हमारे अंदर। जैसे कोई हीरो या हीरोइन, अभिनेता या अभिनेत्री अपनी रोजी रोटी के लिए चटक मटक डांस डूंस करते, बेमतलब की एक्टिंग करते, और ये युवा बालक लड़के और लड़कियां उनके ऊपर आसक्त हो जाते हैं, ये मेरा फेवरेट हीरो है, ये मेरी फेवरेट हीरोइन है, अरलेना एक ने देनी तो बेमतलब बकवाद करनी, खक है तुम्हारा, तुम्हें निकट भी नहीं जा सकते उनके। और यहां कोई हिसार या बरवाला के अंदर कोई आ जाए उनमें से, ये चटक मटक करने वाले हीरो हीरोइन, देखो इन युवा बच्चों की वहां जम घट जुड़ जाएगा, और वो कम से कम भी 200 फुट दूरी पर स्टेज पर खड़े होंगे और वहां से चटक मटक कर रहे होंगे, और ये बड़े खुश हो रहे होंगे, बता सारे दिन धूल फांक कर उल्टे आ जा, खाक मिले उनसे उनको, वो अपनी रोजी रोटी के लिए प्रसिद्धि पा रहे हैं और ये बच्चे उसके ऊपर आसक्त हो रहे हैं। तो ये बीमारी हमारे वहां लगी थी, ये दोष हमारी आत्मा में वहां से घर किया हुआ है। और जैसे कितने ही अच्छे भाई बहन हैं, कितने उनमें प्यार है, और कुछ दिनों के बाद विवाह होगा, विवाह होते ही अलग होना कंपलसरी है, उन्हें मरोड़ी कुछ भी लग गया उनके मन में, अलग जरूर होंगे, रह ही नहीं सकते। तो ये भी वहां से लगी थी, न सोचेंगे अलग होकर मैं यूं बनाऊंगा अपने बच्चा, न बुढ़िया खुआऊंगा और बुढ़िया कोठी बनाऊंगा, न्यारा रहूंगा, वो तो होना जाना वही है जो आपको मिला, लेकिन दुर्बुद्धि हमारे अंदर घर कर चुकी है, ये अपना प्रभाव दिखाती ही रहेगी, यहां इसका कोई विकल्प नहीं है। इसका विकल्प यही है कि आप जो दास बता रहा है, ज्ञान भगवान ने बताया है, इस अनुसार साधना करके आप यहां से पीछा छुटवा के उस लोक में चले जाओगे जहां कोई दुख नहीं, वहां कोई परेशानी नहीं है, वहां मृत्यु नहीं, बुढ़ापा नहीं, कोई रोग नहीं, ऐसा सुंदर शरीर मिलेगा। इस शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है और उस सूक्ष्म शरीर के ऊपर एक और अंदर और शरीर है, 3-4 शरीर है, उसके बाद आत्मा का ओरिजिनल शरीर है, बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर वहां जाकर के और एक शरीर मंडा जाएगा जैसा ये है, और वो शरीर अमर होगा, उसमें नाड़ी तंत्र नहीं है और उसमें राग द्वेष नहीं है, उसमें बीपी हाई लो शुगर या कोई उसमें डिसीज नहीं होता, इतना सुंदर शरीर मिलेगा। और पहले हमें वही प्राप्त था, हम आकर इसमें फंस गए हैं। अब इस ज्योत स्वरूपी निरंजन ने अपने साथ कुछ आत्माओं को लेने के लिए फिर तपस्या शुरू की। जब इसने तीसरी बार जो तपस्या शुरू करी तब परमात्मा ने पूछा कि ज्योत निरंजन अब क्या मांग रहा है, जो मांगा तुझे दे दिया। और उस दौरान जब हम इस ज्योत निरंजन पर आसक्त थे, इसकी ये तपस्या कर रहा था और हम देखे थे, और आज भी ये देख लो आप, किसी गांव के गोरे बनी में और कोई बाबा तपन लग जा, सारा गांव देखने जाएगा, उसने सारा गांव देख का होगा, बाबा तपे दस दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, बैठे नहीं हो तो खड़ा रहे, झूल पर झूल झूल पर झूला है, बस सारे देखने जाएंगे, बता कोई बात हुई। अब जैसे एक आदमी लड्डू खावे मान लीजिए, अब दूसरे उसने देखने जाओ लड्डू खाओ, हो देख लड्डू खाओ, क्या तो गया, फिर कहता आप भी खाओ जब पेट भरे। तो इस तरह की जो बुराइयां हैं ये हमारे वहां से घर करी हुई है और वही हमारे अंदर आज ये हमें परेशान रखती हैं, उसी तरह हम क्रिया कर रहे होते हैं। अब क्या हुआ कि बीच बीच में जब हम उसको देख रहे थे, उसकी तरफ हमारी आसक्तता बन गई थी, ज्योत निरंजन की तरफ, सर पुरुष की तरफ, तो परमात्मा आकाशवाणी किया करते थे कि बच्चों तुम ना देखो इसको, अपना मस्त रहो और इसको अपनी क्रिया करने दो। हम क्या करते रहे, ये आदत अपने यहां भी है कि ऊपर से तैसे हो गए जैसे बिल्कुल हम नहीं देख रहे हैं, पर अंदर से कसक ज्यों की तो बनी रही, इसकी चाह हमारे हृदय में घनी बन गई, हम आसक्त हो गए इस पर बुरी तरह, और वो अंतर्यामी जान गया कि इनका एवं नाश निकट है, ये मुझसे भी धोखा कर रहे हैं, मुझे भी ऊपर से दिखा रहे हैं कि मैं हम नहीं देख रहे हैं और अंदर से उसको चाह रहे हैं। तो हम पतिव्रता पद से गिर गए। तो परमात्मा ने कहा कि बोल भाई, तो परमात्मा ने हमें वहां से निकालना अनिवार्य समझा। किस प्रकार, जैसे सेब विक्रेता होता है, सेब ये फ्रूट, उसको वो सेब कितनी प्यारी होती है और एक सेब कितनी कीमती होती है, अब उसको देखता है कि जो सेब डिफेक्टिव होगी, भले ही वो कितनी कीमती भी थी और प्यारी भी थी, लेकिन वो रखेगा नहीं उनमें, उसको उठाकर कूड़े में फेंकना उसकी मजबूरी है, ना तोरण खराब कर दे वो। तो इस प्रकार हम वो डिफेक्टिव सेब हो गए उस भगवान के, उनकी आत्मा बड़ी दुख पावे है जब सेब विक्रेता की एक सेब खराब हो जाए, उसको पता कितना लॉस हो गया, लेकिन मजबूरी है उसको वहां से फेंकना एक कूड़े में। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने हमें वहां से उठाकर इस कूड़े में डालना अनिवार्य समझा, ना औरों को खराब कर देते। तब परमात्मा को मालूम था, तब परमेश्वर ने कहा कि ज्योत स्वरूपी निरंजन तीसरी बार किस लिए तप कर रहा है। तो उसने कहा कि भगवान मुझे कुछ आत्माएं दे दो। तो परमात्मा ने कहा भी मैं आत्मा नहीं दे सकता, क्योंकि ये मेरे अंश हैं, मेरे शरीर से निकले हैं, वचन से उत्पन्न हुए हैं। अपने आत्मा जिस माँ से किसी बच्चे ने जन्म लिया हो उसकी ममता उसको पता होता है। एक माई का ऐसा लड़का हुआ कति अपंग सा, और उसमें भी उसकी इतनी गजब की ममता होती है, वैसे को कैसा ही है लेकिन उसकी आत्मा उसमें फंसी हुई होती है। इसी प्रकार वो परमात्मा कहते हैं कि ये सभी आत्माएं मेरे से उत्पन्न हुई, मेरे शरीर से निकली है, वचन से हो जन्म हो वो भी उतने प्यारे लगते हैं जिसके वचन से उत्पन्न होते हैं, उसको उतने ही प्रिय होते हैं। तो परमात्मा ने कहा भी मैं ऐसे नहीं दे सकता, ये मेरी आत्माएं, तो इनको दुखी करेगा, तो इनको परेशान करेगा वहां पर। तो इसने कहा कि नहीं, मैं सत का राज करूंगा, जैसा जो कर्म करेगा उसको वैसा ही फल दूंगा। परमात्मा ने पहले तो इससे हां भरवाई, फिर कहा भी देख ले, पर एक बात है, उनसे पूछ ले, जो सविच्छा से जाना चाहता हो तो चले जाएगा, मैं आज्ञा नहीं दूंगा उनको जाने की जब तक वो स्वयं डिमांड नहीं करेंगे। तो ज्योत निरंजन ये सरपुरुष आपके पास, हमारे पास आया। जब हमारे पास आया तो जैसे कोई हीरो आ जाता है तो चारों तरफ बच्चे कैसे इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे हम चारों तरफ उसको झूम गए। उसने कहा कि मैंने पिताजी से तपस्या करके अलग से द्वीप, अलग से ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं, स्थान प्राप्त किया है, क्या मेरे साथ चलोगे तुम, हम तो पहले तैयार थे, तो हमने सब ने कह दिया कि चल पड़ेंगे, यदि पिताजी आज्ञा दे देंगे तो हम चलेंगे, हम तैयार हैं। तब परमेश्वर के पास जाकर के ज्योत निरंजन ने कहा कि जी कुछ आत्माएं मेरे साथ जाने को तैयार हैं, पर आपकी आज्ञा चाहते हैं। परमेश्वर ने कहा सत्य पुरुष ने, कबीर जी ने, कि चल मेरे साथ, मेरे सामने जो हां भरेगा तेरे साथ जाने की तो मैं अलाउड करूंगा। तो जो ही परमात्मा और वो ये सरपुरुष आए हमारे पास, तो परमात्मा ने कहा कि बोल भाई कौन आत्मा इनके साथ जाना चाहता है, अपना हाथ खड़ा करो। अब हम आगे थे चारों तरफ से परमात्मा के आदेश से, वहां बैठ गया सेकंड में, वहां सारा काम होता है, बैठ गए पूरे क्षेत्र में। तो परमात्मा ने कहा कि जो इनके साथ जाना चाहते हैं, सरपुरुष के साथ इसके ब्रह्मंडों में रहना चाहते हैं, हाथ खड़ा करो। अब परमात्मा पहले आकाशवाणी करके हमें समझाया करते थे कि आसक्त ना हो तो मार खा जाओगे। अब उस दिन वो बात उनका याद आई और पिताजी के सामने अब कैसे कहें हम जाना चाहते हैं, सन्नाटा छा गया, कोई नहीं बोला। तब परमेश्वर ने कहा कि सरपुरुष आप तो कह रहे थे ये कुछ जाना चाहते हैं तो बोलते ही नहीं, झूठ बोल रहा तू। तब सरपुरुष ने कहा कि पिताजी ये आप के सामने नहीं बोल रहे हैं, पहले तो सभी कह रहे थे जितने यहां बैठे हैं। तब इतनी बात हो रही थी तभी एक आत्मा ने खड़ा होकर के स्वीकृति दी उसको। अब जो ही उसने एक खड़ा हुआ तो हमने सभी ने हाथ खड़े कर दिए और खड़े भी हो गए। हमने सोचा कहीं ये अकेला ही सारा काम लूट ले और हम रह जा पीछे, देखा देखी सारे खड़े हो गए, जितने यहां फंसे हुए हैं, चींटी बने हैं, हाथी बने हैं, कुत्ते बने हैं, गधे बने हैं, सुअर बने, पर हर में तो हम वहां से आए, हम वहां सभी मानव शरीर थे हमारे। तो परमात्मा ने कहा ठीक है ज्योत निरंजन, यानी सरपुरुष तू जा अपने लोक में, 21 ब्रह्मंडों में जा, जिस जिसने तेरे साथ जाने की स्वीकृति दी है उनका मुझे सब मालूम है, मेरे पास उनके सब कोड वर्ड नंबर उपलब्ध हैं, इन सबको मैं भेजूंगा, पर नू का नू लापड़ा नहीं भेज सकता, इनको मैं अलग से व्यवस्था करूंगा, बीज रूप में बनाऊंगा पुनः, और अब तू जा। वो भेज दिया, जिस आत्मा ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी उसको एक सुंदर लड़की बना दिया अपने वचन से, और उस लड़की के अंदर वो सभी आत्माएं सूक्ष्म रूप में डाल दी। अपने आत्माओं जैसे एक वट वृक्ष देखा होगा, बड़का वृक्ष, बड़का वृक्ष इतना बड़ा होता है बहुत गुना, और उसका बीज होता है राई जितना, राई से छोटा होता है बड़का बीज। अब परमात्मा ने उन सबको बीज रूप बना दिया, परमात्मा की वचन में सारी शक्ति है, वो कुछ भी कर सकता है, तो जितने भी वहां थे सब बीज रूप में बना दिए, और उस बीज को अपने वचन से उस लड़की जो बनाई थी प्रथम जिसने स्वीकृति दी थी उसके शरीर में प्रवेश कर दिया, सारे के सारे बीज रूप में, और उस लड़की से कहा कि बेटी अब तेरे को वहां भेज रहे हैं ज्योत निरंजन के पास, सरपुरुष के पास, और उसके साथ मिलकर तू ये सृष्टि रच देना, तेरे को वचन शक्ति दे दी है मैंने, वचन से जितने भी तू जीव कहेगी, चाहे पशु बनाना, चाहे पक्षी बनाना, और चाहे तो देव बनाना, मनुष्य बनाना, जैसा सोचेगी वैसे ही बन जाएंगे। अपने पुत्र सहज दास से कहा कि सहज दास अपनी बहन को ज्योत निरंजन के पास छोड़ आओ, अब उस सरपुरुष के पास, और उसको बता देना कि ऐसे ऐसे मैंने इसके अंदर सभी वो आत्माएं जो तेरे साथ आना चाहती थी बीज रूप में डाल दी हैं, और ये बहन जितने भी तू कहेगा उतने ही नर और मादा उत्पन्न कर देगी, इसमें ऐसी शक्ति भी मैंने भर दी है, वचन में शक्ति दे दी है। सहज दास ने जाकर के ज्योत निरंजन से सारी वार्ता सुना दी और लड़की को वहां छोड़कर वापस आ गया। अब वहां दोनों अकेले रह गए, सरपुरुष और ये लड़की जिसको अब दुर्गा कहते हैं, जो अष्टंगी कहलाती है। अब ये दोनों रहे, तो लड़की युवा होने के कारण उसका रंग रूप निखरा हुआ था। तो पुण्यात्माओं, ये बलात्कार की जो बुराई हमारे अंदर घर की है सभी प्राणियों में, ये वहीं से रोग लगा था। अब जिस राजा यानी जिस भगवान के, जिस स्वामी के राज में हम रह रहे हैं, उस जैसा भाव सबका बन ही जाता है, यथा राजा तथा प्रजा। तो ज्योति निरंजन ने वहां उस लड़की के साथ बलात्कार करने की चेष्टा की। लड़की अपना हर सामर्थ्य तक, अपनी इज्जत की रक्षा के लिए वो सब कुछ करती है। तो उस दुर्गा ने कहा कि ज्योति निरंजन बात सुन, देख तो पहले अंडे से उत्पन्न हुआ पिता के वचन थे, बाद में हमारी उत्पत्ति हुई, हम आपके छोटे भाई बहन हैं। अब मैं पिता के वचन से उत्पन्न हुई हूँ लड़की, आप पिता के वचन से हुए हो लड़के, तो मैं आपकी बहन हूँ, और बहन के साथ ये दुष्कर्म तुझे पाप ग्रस्त कर देगा, तो जुल्म ना कर, और मेरे पास पिता की दी हुई वो वचन शक्ति है, जितने प्राणी तू कहेगा मैं उत्पन्न कर दूंगी। पर ज्योति निरंजन जो है वो काम बस इतना अंधा हो गया था वासनावश कि उसने एक नहीं सुनी और लड़की के साथ अत्यधिक निकट आकर दुर्व्यवहार करने की चेष्टा की, अभद्र तरीके से मुंह खोला। तो लड़की ने कोई और चारा ना दिखा, सूक्ष्म रूप बनाया और उसके अंदर प्रवेश कर गई, मुख के माध्यम से पेट में चलेगी और कहीं अपनी इज्जत की रक्षा उसको लगी नहीं, सुरक्षा का स्थान नहीं मिला, और वहां पेट से पुकार किया परमात्मा से कि हे पिताजी मेरी रक्षा करो, हे पिताजी मेरी रक्षा करो। परमात्मा को पता था कि इनको किसे लड्डू देगा, यूं जाकर पता था पहले। तब परमात्मा अपने पुत्र जोग जीत का रूप बनाकर, जो प्रथम सबसे पहले 16 उत्पन्न किए थे उनमें से सहज दास जोग जीत अचिंत, तो जोग जीत का रूप बनाकर उस सर्पुरुष के 21 ब्रह्मांड में प्रकट हो गए और कहा कि ज्योति निरंजन तने जुल्म कर दिया, ऐसे सच्चे लोक में जो ऐसा जुल्म करता है उसको बहुत भयंकर दंड मिलता है, सुन ले आदेश परम पिता का, आज से तेरा नाम काल होगा, 1,00,000 मानव शरीर धारी प्राणियों का तो नित आहार किया करेगा, तूने इस लड़की को अपने निंगल लिया, इसके साथ दुर्व्यवहार किया, लड़की को उसके पेट से निकाल दिया, उसके पेट को चीर कर, और कहा कि तुम दोनों अब निकल जाओ 21 ब्रह्मांड को लेकर सच्चे लोक तक, सतलोक से। अब वहां ज्योति निरंजन ने बहुत प्रार्थना की, विनय की, गिड़गिड़ाया कि भाई मुझे माफ करवा दो पिताजी से, खुद मालिक खड़े थे और खड़े थे वो अपने पुत्र जोगजीत के रूप में। परमात्मा ने कहा कि निकल जा बस, अब तेरे लिए कोई स्थान नहीं है इस सच्चे लोक में। इतना कहकर जोगजीत रूप में परमात्मा अदृश्य हो गए और ज्योति निरंजन के 21 ब्रह्मांड विमान की तरह चल पड़े। वहां से दुर्गा और वो दोनों ही रह गए। अब वहां से 16 शंख कोश की दूरी पर सतलोक के अंतिम छोर से, और ये 16 शंख कोश नील पद्म शंख इतनी दूरी पर आकर के 21 ब्रह्मांड ये चक्कर लगाने लग गए। अब ज्योति निरंजन के मन में और ज्यादा क्रोध पैदा हो गया और उसने ठान ली कि जितने भी आत्माएं जन्म होंगे वो भगवान की आत्मा तो उसी की है, उनको सताऊंगा और उस सतपुरुष को यानी पिता को दुखी करूंगा, उनकी आत्माओं को खूब सताऊंगा। अब उसके बाद उसने दुर्गा के साथ फिर से वही अपनी इच्छा पूर्ति करने की चेष्टा की। लड़की ने फिर से विनय किया कि ज्योति निरंजन मेरे पास वचन शक्ति है, आपको सृष्टि चाहिए, मैं सृष्टि रच दूंगी, आप ये जुल्म ना करो। देखो पहले तो आप मेरे बड़े भाई और मैं आपकी छोटी बहन, दूसरे में आपके पेट से बाहर आई हूँ आपकी बेटी होगी, यानी उसने हर कोशिश की किसी तरह इसकी बुद्धि ठिकाने आ जा। दुर्गा ने खूब चेष्टा की पर वो नहीं माना, तो उसने देख लिया कि कोई चारा भी नहीं है, मैंने अपने पैर पर आपको आड़ा मारा, जिस कारण से उसने समर्पण करना पड़ा और जिस कारण से दुर्गा और इस काल के संयोग से सबसे पहले तीन पुत्रों की उत्पत्ति हुई। बड़े का नाम ब्रह्मा रखा, वो रजोगुण युक्त कर दिया, क्योंकि इस काल ने 21वें ब्रह्मांड में एक स्थान बना रखा अलग से, और प्रत्येक ब्रह्मांड में भी ऐसे ही इसने रचना कर रखी है। जिस भी ब्रह्मांड में ये रचना शुरू करता है उसके ऊपरले क्षेत्र में तीन स्थान बना रखे हैं इसने, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र। जैसे किसी मकान में तीन कक्ष हैं, एक कक्ष में एक कमरे में चित्र लगे हैं अश्लील, तो वो तो समझो रजोगुण प्रधान कमरा है, और दूसरे में लगे हैं साधु संत फकीरों के, तो वो सतोगुण प्रधान कमरा समझ लो स्थान, और तीसरे में लगे हैं सूरवीरों के शहीदों के, तो वो समझ लो तमोगुण प्रधान क्षेत्र। अब जैसे जिस कक्ष के अंदर बेहुदी फिल्में लगी हों, चित्र लगे हों, वहां जब कोई रहेगा उसका भाव वैसा ही बना रहेगा, ऐसे ही विचार बने रहेंगे, और जब जाएगा दूसरे कक्ष में जहां साधु संत फकीर महापुरुषों के चित्र लगे हों, उनकी जीवनी लिखी हो, तो उनको पढ़कर ऐसा ही भाव बन जाता है, अच्छे विचार बन जाते हैं, तो सतोगुण प्रधान अक्षेत्र हो गया। और फिर जहां जाते हैं सूरवीरों के फोटो लगे हों, देशभक्तों के लगे हों, उनकी गाथाएं लिखी हों, उनको पढ़ पढ़कर वैसा ही मन में वैसी प्रेरणा बन जाती है। ठीक इसी प्रकार इस काल भगवान ने एक ब्रह्मांड के सबसे ऊपर के स्थान पर, उस स्थान पर तीन स्थान बना रखे ऊपर के पोर्शन में, एक रजोगुण प्रधान, दूसरा सतोगुण प्रधान, तीसरा तमोगुण प्रधान। और यहाँ ही वहां ये क्या छल करता है, अपना रूप तो बना लेता है ब्रह्मा जैसा पंचमुखी, और दुर्गा को सावित्री रूप बना देता है, और सबसे पहले उस रजोगुण प्रधान अक्षेत्र में चले जाते हैं, और जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो लेता ये वहीं रहते हैं, जिस कारण से वो बच्चे की वृत्ति, उसका स्वभाव, उसका स्वरूप उस जैसा ही जन्म लेता है, तो वह रजोगुण ब्रह्मा बन जाता है। उसके बाद उसको अचेत कर देते हैं और परवरिश कोमा में रखकर परवरिश जारी रखते हैं। उसके बाद ये जाते हैं सतोगुण प्रधान क्षेत्र में, तो वहां पर जाकर के ये स्वयं विष्णु रूप बना लेता है, चार भुजा बना लेता है और विष्णु जैसी शक्ल बना लेता है, और दुर्गा की लक्ष्मी जैसी सूरत बना लेता है, बना लेती है या। और तब ये वहां रहते हैं तो दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो सतोगुण युक्त होता है, उसका नाम विष्णु रख देते हैं, और जब तक उसकी जन्म नहीं होता तब तक उसको वहीं रखते हैं, तो वो वैसे ही गुणों से युक्त हो जाता है। इसी प्रकार तीसरे स्थान पर ये जाता है और दुर्गा को ले जाता है, दुर्गा को पार्वती रूप बना लेता है, स्वयं को शिव जैसा जटा वटा ऐसे स्वरूप बना लेता है, तो वो लड़का फिर वैसी ही सूरत का उत्पन्न होता है और उसमें वही गुण हो जाते हैं। इस प्रकार ये रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की उत्पत्ति करके फिर जब ये युवा हो जाते हैं, इनको शेषनाग पर विष्णु को, और फिर उससे निकाल के एक कमल, एक जादूगर भी कर सकता है ये काम, उसकी नाभि से कमल निकाल दिया और उसमें उसके ऊपर ब्रह्मा को सचेत कर दिया, उधर शिव को वहां से ला करके सचेत कर दिया, वहां कैलाश पर्वत पर उन तीनों को इकट्ठा कर दिया। श्री देवी भागवत के तीसरे स्कंद में आपको अभी दिखाएंगे, उसके अंदर पूरा विवरण लिखा हुआ है, इन तीनों को इकट्ठा किया, विमान में बैठाया दुर्गा ने, विष्णु जी बेहोश पड़े थे, उसमें से एक देवी निकली, फिर वो सचेत हुआ, फिर आगे विमान में बैठा कर ले गई, वो लंबा प्रकरण है, अलग से बताएंगे। फिर क्या हुआ, इन तीनों को घुमा फिरा कर और इनको अलग अलग द्वीप दे दिए, अलग अलग इनकी राजधानी बना दी, ब्रह्मा जी को ब्रह्मापुरी में, बना दी, विष्णु जी को विष्णु लोक बना के वहां दे दिया, छोड़ दिया, शिव जी को शिवलोक बना के छोड़ दिया। काल ने अपनी पत्नी से कहा कि आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं कभी किसी के सामने अपने वास्तविक रूप में नहीं आऊंगा और मेरा भेद नहीं बताओगी किसी को। यदि तूने मेरा भेद बता दिया तो मेरे से बुरा नहीं होगा। अब ये दुर्गा फंसगी, इसके अनुसार चलना इसका इसकी व्यवस्था होगी, और इसके कहने से सौ सौ झूठ बोलती है, सब छल करती है, अपने पुत्रों को भी वास्तविकता नहीं बताती है। अपनात्माओं, अब आपके मन में ये आएगा कि पिताजी तो जानी जान थे, उन्होंने तो हमें नहीं आने देना चाहिए था यहाँ पर। पुनात्माओं, हम इतनी प्रबल इच्छा होगी हमारी, डटे नहीं डटे। एक समय ये दास जूनियर इंजीनियर की नौकरी कर रहा था, और वहाँ एक हमारा भी कंस्ट्रक्शन काम था और साथ में एक नहर वालों का भी कंस्ट्रक्शन कार्य था। तो वहाँ एक लड़की मजदूरी कर रही थी, दोपहर के समय वर्क्स के नीचे मजदूर भी बैठे थे, हम भी वहाँ बैठे थे, हम भी अपना खाना ले गए थे, वो खा रहे थे, वो बच्चे भी, वो मजदूर भी खाना खुना खा रहे थे, और एक लड़की रो रही थी बुरी तरह। उसके दो बच्चे थे, एक तो वहाँ नीचे सो रहा था मिट्टी में, और एक को उसने वर्क्स के टांग रखा था एक कपड़े में बांध कर, जैसे पालना सा बना देती है। उससे पूछा कि बहन क्यों रो रही है तू, क्या बात है, ना खाना खाया आपने? उसने बताया कि मैं एक बहुत बड़े धनी बाप की बेटी थी और मैंने अपने कर्म आप फोड़ लिए, जिसके आज मैं विवाह किया है, मैंने अपना अपनी मर्जी से विवाह किया है, और ये हमारे वहां नौकर था और मैं इसके जाल में फंस गई। मेरे माता पिता ने मुझे खूब समझाया बेटा, बहुत दुख पावेगी, और हम विवाह ही तो करना है, हम कर देंगे तेरा, अच्छी तरह करेंगे, अपनी देख रेख में रखेंगे, लेकिन मैं कति नहीं मानी, मैं इतना आसक्त होगी इस दुष्ट व्यक्ति पे। अब तरो रही थी वो अपने कर्मा ने, और मैं रात को भाग गई थोड़ा बहुत जेवर गहना लेकर घर से, और इतनी दूर आ गए कि हमारे माता पिता को हमने बताया भी नहीं, पता भी नहीं चलने दिया। अब मेरे दो पुत्र हो गए, जो धन में लाई थी वो सारा इसने शराब पी कर खो दिया। अब मैं मजदूरी करती हूँ और वो शराब पी कर घर पर पड़ा है, इसलिए रो रही हूँ, मैंने अपने कर्म फोड़ दिया, अपने पैर पर आपको आड़ा मार लिया। माँ बाप ने तो बतेरी समझाई थी पर मैं मानी नहीं। तब परमात्मा की यह कथा दास को याद आई कि हमने भी ऐसे अपने पैर पर को आड़ा मार रखा है, हम डटे नहीं डटे, और ऐसे ही फिर बाद में कष्ट उठाने ही पड़ते हैं। अब वो दयालु उस पिता से भी दयालु अब कह रहा, बेटे बच्चों तुम फिर आ जाओ यहाँ पर, हमें फिर वापस आने का एक तरीका बता रहा है। तो अब जो प्रसंग चल रहा है उसको पूरा करते हैं। उसके बाद क्या हुआ, अब इन तीनों का विवाह करना कंपलसरी था। दुर्गा ने अपने वचन से तीन पुत्री उत्पन्न की। पुण्यात्माओं, आप ये ना समझना कि दास ने ये सदग्रंथ पढ़ के थोड़ी बहुत अटकलबाजी ला रखी है, 600 वर्ष पहले परमात्मा ने ये वाणी लिखी हुई है जो दास आपके रूबरू करेगा, और आज हमारे सदग्रंथों में प्रमाण है जिसको आज तक हमारे धर्म गुरु नहीं बता सके। श्रीमद भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24 और 25 में ये गीता ज्ञानदाता यही ये काल है, हमेशा ये गुप्त रहता है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 9 में कहता है कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं, अद्भुत हैं। अब ये क्या बता रहा है, 7वें अध्याय के 24-25 श्लोक में गीता जी के, कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं ये मेरा घटिया और अटल नियम है, मैं कभी किसी के समक्ष अपने वास्तविक रूप में नहीं आता। और ये जन समुदाय अबुद्ध यानी बेबुद्धि के, ये मंदबुद्धि के लोग मुझे कृष्ण मान रहे होंगे, अर्जुन मैं कृष्ण नहीं हूं, श्री कृष्ण मैं बोल रहा था वो प्रेत की तरफ, ज्योत निरंजन ये काल। वो कहता है कि ये मेरा घटिया अटल नियम है, अनुतम अवे, ये अटल नियम है मेरा, अनुतम माने घटिया, कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता है। तो इसने प्रतिज्ञा कर रखी है, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताया था, सदग्रंथों में हमने अब पाया है, ये लिखा हुआ। जब ये बुद्धि काम की परमात्मा कबीर जी की दया से वो सदग्रंथ समझ में आए हैं, तो उसने कहा कि मैं कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा, मैं अपने वास्तविक रूप में कभी नहीं आऊंगा, तू मेरा भेद मत बताना और सारे संसार को संभाल। तब दुर्गा ने कहा कि आप अच्छी बात करते हो, मैं एक औरत और इतने बड़े 21 ब्रह्मांड को कैसे संभालूंगी, अब मैं फंस गई आपके कितने नाच नचाले तो कैसे संभाल पाऊंगी मैं। तब उसने कहा था कि तू चिंता मत कर, सब कुछ मैं करूंगा पर करूंगा गुप्त रूप से, किसी को पता नहीं लगने दूंगा। आकाशवाणी की इस काल ने कि दुर्गा इनका विवाह कर, तब दुर्गा ने अपने देवी जी ने अपने मुख से अपने वचन से 3 पुत्रियां उत्पन्न की और समुद्र में छुपा दिया। उसने सारा बता दिया काल ने, इनको समुद्र में छुपा दे जाके अपनी शक्ति से अचेत करके। और उधर से मैं सारी व्यवस्था करता हूं, वहां पर इस काल ने एक पर्वत रखा, उसके चारों तरफ शेषनाग लपेट दिया और कहा तीनों पुत्रों को भेज दिए उस सागर मंथन करें। अब तीनों वहां पर गए, दुर्गा ने बता दिया कि जाओ सागर मंथन करो, वहां सारी व्यवस्था मिलेगी। इन्होंने जो ही वो पकड़ के लाए तो बहाना था, अपने आप घूम रहा था सारा कुछ बहाना था, तो उसमें से 3 लड़कियां निकली। दुर्गा ने कहा था कि जो भी वस्तु निकले उसकी पहचान रखना, अलग अलग लाना, जो प्रथम निकले, द्वितीय निकले, तृतीय निकले, उनको याद रखना कौन सी पहले कौन सी दूसरी कौन सी वस्तु तीसरी बार रही। तो 3 लड़कियां आई, वो फंक्शन अपने आप बंद हो गया, नहीं चला, वो समझ गए कि बस यही मिलना था। वापस आ गए, अलग अलग लड़कियों को साथ लेकर के माँ से बताया कि ये प्रथम निकली थी, ये द्वितीय निकली थी, ये तृतीय निकली थी। इसी प्रकार इन तीनों पुत्रों का जन्म हुआ था, प्रथम ब्रह्मा का हुआ था, दूसरा विष्णु का हुआ था दुर्गा और इस काल के संयोग से, और तीसरा शंकर का हुआ था। तब दुर्गा ने कहा कि जो प्रथम निकली थी उसका नाम सावित्री रखा और ब्रह्मा से विवाह कर दिया। वहां कोई बरात नहीं थी उस समय, पुण्यात्मा कुछ ध्यान देना दास के वचनों पर, जिस समय ब्रह्मा और विष्णु का विवाह हुआ, शिव का विवाह हुआ, वहां बरात नहीं थी। माँ ने कह दिया यह लड़की बेटा तेरे ब्याह दी, हो गया ब्याह। ऐसे दूसरी का नाम लक्ष्मी रखा और विष्णु से शादी कर दी जो दूसरी बार निकली थी, और तीसरी बार जो निकली थी सबसे लास्ट में वो शंकर से ब्याह दी। अब जो हम ड्रामा करते हैं ये हम भगवान के विधान के विरुद्ध करते हैं, बरात ले लेना, नाचना और कूदना और फंड करना। तो यहां से फिर इस काल भगवान की सृष्टि प्रारंभ हुई, सुर असुर उत्पन्न हुए, आगे फिर चलकर ये पूरा ब्रह्मांड ये पृथ्वी सृष्टि से भर गई। अब इसका प्रमाण आपको थोड़ा सा 600 वर्ष पहले परमात्मा ने बताई अपनी अमृतवाणी में सुनाता हूं, ताकि आपको विश्वास होगा। अब इति सिद्धम के दुर्गा और काल के संयोग से, पति पत्नी व्यवहार से विष्णु की उत्पत्ति हुई। अब सिद्ध हो गया विष्णु की माता दुर्गा और पिता ये सदाशिव का पिता। नेक्स्ट है समाप्त हुआ। देखिए अब ये हमने पढ़ा, तेरा विष्णु नाम विख्यात हुआ, 6 अध्याय समाप्त हुआ, 7 अध्याय में रुद्र संहिता और प्रश्न नंबर 103 पे। अब ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से तत्पश्चात, अब हम इसके ज्ञान बोध में आते हैं। ज्ञान बोध ये है, ज्ञान बोध, ज्ञान बोध नामक अध्याय है और बोध सागर एक खंड है। इसके 21 पृष्ठ पे हम आपको सुनाते हैं। परमात्मा ने कहा धर्म दास ये जग बोरा ना कोई न जाने पद निर्वाण। निर्वाण माने मोक्ष मार्ग, किसी को ज्ञान नहीं, निर्वाण माने मोक्ष। यही कारण मैं कथा पसारा जग से कहिए राम नियारा। ये मिसप्रिंट कर रखा है इन कबीर पंथियों ने अज्ञानता के कारण, कई अक्षर बदल रखे हैं, ये राम है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का वर्म नसाओ। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। तेरे तीनों देवताओं का जन्म मृत्यु बताता हूं कैसे उत्पत्ति हुई। परमात्मा ने कहा कि धर्मदास अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को, क्योंकि परमात्मा का विधान है, परमात्मा का जो नियम है वो अटल है, और यही वेदों में प्रमाणित है कि वेदों में भगवान की महिमा लिखी है परमात्मा की। उसमें कहा है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 के मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक, और भी अनेक स्थानों पर ये प्रमाण है कि वो परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है। ऊपर चौथे लोक में भी भगवान रहता है, जहां से बैठकर सबकी रचना करता है, और वहां से फिर नीचे के लोक सतलोक में भी रहता है, तीसरे मुक्ति धाम में। वहां से गति करके चलता है, वहां से गति करके आता है और अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान बताता है, यथार्थ ज्ञान से परिचित कराता है, और वो कवियों की तरह असर करता है और अपने ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से वो बोल बोल के उच्चारण करके सुनाता है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन, यथार्थ जो भक्ति और यज्ञों की जानकारी विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म ब्रह्मणे मुखे, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो अपने मुख कमल से ज्ञान बोला है उसमें है वो यथार्थ ज्ञान।